नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। ईरान ने युद्ध विराम उल्लंघन के विरोध में हॉर्मुज जल डमरू मध्य बंद किया और तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल बातचीत और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। प्रधानमंत्री मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है, बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। ये विषय उम्र बढ़ने के साथ स्वस्थ, सक्रिय और सम्मानित जीवन जीने के लिए योग का आजीवन अभ्यास करने के महत्व पर बल देता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में सामान्य योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। इस कार्यक्रम में हजारों लोग योगासन करेंगे, जबकि देश दुनिया के लाखों लोगों के वर्चुअल माध्यम से जुड़ने की संभावना है। दुनिया भर में भारतीय दूतावास और राजनयिक मिशन कल 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए पूरी तरह तैयार हैं। एक रिपोर्ट।
नेपाल में आज भारतीय दूतावास ने लुम्बिनी डेवलपमेंट ट्रस्ट और बीपी कोइराला इंडिया नेपाल फाउंडेशन के सहयोग से योगासन कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिकारी और सैकड़ों लोग शामिल हुए। चीन में भारतीय दूतावास ने पेइचिंग में आयोजित योग कार्यक्रम की झलकियां साझा की। इस कार्यक्रम में लोगों ने बड़े उत्साह से योग सत्रों में भागीदारी की। वहीं जापान में भारतीय दूतावास ने कल सुकीजी होंगन जी मंदिर में योग दिवस कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। दूतावास ने लोगों को योगासन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। इस बीच ओमान में भारत के राजदूत प्रशांत पिसे ने भारतीय समुदाय के सदस्यों और भारत के मित्रों को कल दूतावास में होने वाले योग दिवस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मनोज।
इस बीच संयुक्त अरब अमीरात में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत डॉ दीपक मित्तल के नेतृत्व में जबल हवीद पर्वत की चोटी पर सुबह सुबह योगासन और ध्यान के सत्र आयोजित हुए। इस कार्यक्रम का आयोजन अल एन शहर के भारतीय सामाजिक केंद्र ने किया। उधर दुबई में भारतीय महावाणिज्य दूतावास दुबई पुलिस की पॉजिटिव स्प्रिट काउंसिल के साथ कल सुबह 5:30 बजे से 6:30 बजे तक दुबई पुलिस अधिकारी क्लब में योगासन कार्यक्रम आयोजित करेगा। अबुधाबी में भारतीय दूतावास सुबह 8 बजे से 9 बजे तक निर्देशित योग सत्र के लिए प्रतिभागियों को आमंत्रित कर रहा है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने आज घोषणा की है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से बंद कर दिया गया है। लेबनान पर इसराइल की सैन्य कार्रवाई जारी रहने का हवाला देते हुए ये फैसला किया गया है। एक रिपोर्ट।
ईरान ने कहा है कि ये संघर्ष खत्म करने की प्रतिबद्धताओं को बनाए रखने में अमेरिका विफल रहा है और इससे उस पर विश्वास कम हुआ है। सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित बयान में संयुक्त सैन्य कमान ने चेतावनी दी कि यदि इसराइल के हमले जारी रहे तो और उपाय किए जाएंगे। ये घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है जब इस सप्ताह के शुरू में अमरीका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते के बाद हॉर्मुज के रास्ते वाणिज्यिक जहाजों की आवाजाही फिर शुरू हो गई थी। इस बीच दक्षिणी लेबनान पर इसराइल के हवाई हमलों में 2 बच्चों सहित 16 लोग मारे गए। संघर्ष विराम समझौते की खबरों के कुछ घंटों बाद ही ये हमले हुए। लेबनान की राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी ने बताया कि हमलों में नाबतीह शहर और पड़ोस के कई गांवों को निशाना बनाया गया। माना जा रहा है कि इस हमले में 7 लोग मलबे में दबे हैं। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच अगले दौर की वार्ता के लिए अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। ये वार्ता कल शुरू होनी थी लेकिन लेबनान में इसराइल और हिजबुल्ला के बीच जारी संघर्ष के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमरीका और ईरान के बीच होने वाली इस नई वार्ता में संभावित परमाणु समझौते पर चर्चा होने की उम्मीद है। ये बातचीत हाल ही में दोनों देशों के बीच हुए समझौता ज्ञापन के बाद हो रही है जिसका उद्देश्य पश्चिम एशिया में तनाव और संघर्ष को समाप्त करना है। अमरीकी मीडिया के अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वरिष्ठ सलाहकार और दामाद जेरेड कुशनर भी स्विट्जरलैंड पहुंच चुके हैं। हालांकि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच बातचीत कब शुरू होगी इसकी आधिकारिक जानकारी अभी नहीं दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मजबूत और प्रभावशाली नेता बताया है। एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि श्री मोदी के पिछले 12 सालों के नेतृत्व में भारत को मजबूती और स्थिरता मिली है। उन्होंने कहा कि भारत और अमरीका के बीच व्यापारिक संबंध अच्छे हैं और दोनों देशों के बीच कारोबार जारी है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया भर में सम्मान मिलता है और वो सशक्त नेता हैं। देश भर में बढ़ती महंगाई और आर्थिक दबाव के कारण हफ्तों से चल रहे सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद बोलिविया के राष्ट्रपति रोड्रिगो पाज ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। एक रिपोर्ट।
राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रोड्रिगो पाज ने अवरुद्ध सड़कों को खोलने और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए आपातकाल लागू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि बोलिविया के लोग अब सड़क अवरोधों के बंधक नहीं रह सकते जिन्होंने काम, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को बाधित कर दिया है। श्रमिक संघों, किसानों और पूर्व राष्ट्रपति इवो मोरालेस के समर्थकों द्वारा समर्थित ये प्रदर्शन हाल के हफ्तों में और तेज हो गए हैं में प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति पाज के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। लंबे समय से जारी सड़क अवरोधों के कारण कई क्षेत्रों में भोजन, ईंधन और चिकित्सा आपूर्ति की कमी हो गई है और आर्थिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं प्रशांत कुमार।
सीरिया के उत्तरी अलेप्पो प्रांत में अज्ञात व्यक्ति ने 2 सैनिकों की हत्या कर दी। रक्षा मंत्रालय के हवाले से सरकारी समाचार एजेंसी सना ने कहा कि दोनों सैनिकों को अलेप्पो के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मनबिज शहर के निकट निशाना बनाया गया। सीरिया में सत्ता हस्तांतरण की अवधि में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की घटनाएं बढ़ रही हैं। यूनान में आज भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 5.8 मापी गई। यूरोपीय भूमध्य सागरीय भूकंपीय केंद्र के अनुसार ये भूकंप क्रीट द्वीप पर रेथिमनो शहर के पास 13 किलोमीटर की गहराई पर आया। अब तक जानमाल के किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। इससे पहले अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 218 रन बनाए थे। प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कप्तान शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। ईरान ने युद्ध विराम उल्लंघन के विरोध में हॉर्मुज जल डमरू मध्य बंद किया। और तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।